नमस्कार, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं कहूंगा विचार करने योग्य विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे सामने हैं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की एक बेहद खास पुस्तक परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी का एक अंश।
जी, और खास तौर पर हम उनके अध्याय वरिष्ठता में नारी का पलड़ा भारी है में जो विचार हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे।
चलिए देखते हैं इसे। ये अध्याय कई जो स्थापित मान्यताएं हैं ना समाज की, उनको सीधी चुनौती देता है।
बिल्कुल, ये स्रोत इसी बात की गहराई में जाता है कि कैसे, मतलब भौतिक शक्ति या जिसे कहें पुरुष प्रधान व्यवस्था, उसने समाज में नारी की जो स्वाभाविक गरिमा है उसको अक्सर नजरअंदाज किया है। पर वंदनीय माता जी का दृष्टिकोण यहाँ एकदम अलग है। उनका मानना है कि असलियत कुछ और ही है। ऐसा लगता है कि वो जो वरिष्ठता और संपन्नता से जुड़ी भौतिक शक्तियां हैं उन पर जब पुरुष का नियंत्रण शायद बढ़ा तो ये थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी।
हाँ, और वंदनीय माताजी पुस्तक की शुरुआत में ही एक बहुत दिलचस्प बात रखती हैं। वो कहती हैं कि देखिए, नई पीढ़ियों को जन्म देना, पालना, उनका विकास करना, ये जो भारी जिम्मेदारी नारी पर आई
जी,
और जो पारिवारिक व्यस्तताएं इससे जुड़ी, उनके कारण वो एक तरह से स्वतंत्र रूप से धन कमाने के क्षेत्र में पुरुषों से शायद पीछे रह गईं।
हाँ, और फिर हुआ ये, जैसा कि पुस्तक बताती है, कि इसी आर्थिक निर्भरता को कुछ लोगों ने गलत तरीके से नारी की कमजोरी समझ लिया। और यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि स्रोत इस सोच की तुलना मत्स्य न्याय से करता है।
मत्स्य न्याय?
हाँ।
अच्छा।
हाँ, मतलब जंगल का कानून, जहाँ बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, वो वाली बात।
अच्छा, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब।
हाँ, बिल्कुल वही। और पुस्तक का तर्क है कि देखिए, ये सिद्धांत जानवरों में भले ही चलता हो, इंसानों के समाज में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर हम इंसान भी ऐसे ही नीतियां अपनाने लगे तो फिर इंसानियत की मतलब विशिष्टता ही क्या रह जाएगी। ये तो पिछड़े समाजों की बात हो सकती है, सभ्य मनुष्यों की नहीं।
लेकिन फिर वंदनीय माता जी इस पूरी धारणा को पलट देती हैं, है ना? वो नारी के व्यक्तित्व और उसके योगदान को एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ऊंचे स्तर पर देखती हैं।
निश्चित रूप से, पुस्तक में जननी और पत्नी के रूप में नारी के त्याग और बलिदान की तुलना देखिए महान पौराणिक दानियों से की गई है, जैसे राजा शिवी, महर्षि दधीची और राजा हरिश्चंद्र।
शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र, बापरे।
हाँ, और ये तुलना अपने आप में बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये उन बलिदानों को आप समझिए सर्वोच्च श्रेणी में रखती है।
और वो दूसरा परमेश्वर वाली बात, वो तो और भी ज्यादा शक्तिशाली लगती है मुझे। पुस्तक कहती है कि जो मनुष्य जैसी कृति को गढ़ सकती है उसे दूसरा परमेश्वर कहना ही उचित है। ये वाकई एक बहुत ऊंचा दर्जा है।
सही कहा आपने, ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये तो महत्व को जैसे पुनर्परिभाषित करना हुआ।
हाँ।
और अगर हम इसे परिवार के स्तर पर देखें तो पुस्तक परिवार को एक छोटे राज्य जैसा मानती है।
छोटे राज्य जैसा?
जी हाँ, और नारी को उसकी संचालिका या कहिए साम्राज्य, उसे गृह लक्ष्मी भी कहा गया है।
गृह लक्ष्मी यानी घर की लक्ष्मी, ऐसा क्यों कहा गया है, क्या कारण बताया है?
भरकर उसे स्वर्ग जैसा बना सकती है। यहाँ तक कहा गया है कि उसकी मुस्कान में कला है और उसकी नजर में अमृत, जिससे परिवार के सदस्य जो हैं वो निरंतर शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। एक जगह तो परमात्मा को रस स्वरूप बताया है जो बड़े विरले योगियों को मिलता है, पर परिवार उस रस को नारी रूपी अमृत कलश से रोज प्राप्त करता है, ऐसा लिखा है।
कमाल है। तो फिर जैसा वंदनीय माता जी खुद ही पुस्तक में सवाल उठाती हैं कि इतनी महान, इतनी पूजनीय नारी को समाज में कमतर या निकृष्ट कैसे मान लिया गया, ये विरोधाभास क्यों आया?
यही तो वो मूल प्रश्न है जो ये अध्याय हमारे सामने रखता है। पुरुषों ने सम्मान करने की बजाय उस पर अपना अधिकार क्यों जमाया? जिसे पूजना चाहिए था उसे शोषण के बंधनों में क्यों जकड़ा गया?
ये सवाल तो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं।
बिल्कुल, और ये केवल बीते हुए कल के सवाल नहीं है, ये आज भी हमारे समाज की सोच और व्यवहार पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये वो अनसुलझे मुद्दे हैं जिनका समाधान समाज को खोजना है। तो संक्षेप में कहें तो यह अध्याय नारी की आंतरिक श्रेष्ठता पर, समाज और परिवार में उसके अद्वितीय योगदान और त्याग पर जोर देता है, और ये हमें मजबूर करता है कि हम समाज के उन पैमानों पर फिर से विचार करें जिनसे नारी का मूल्यांकन होता आया है। यह स्थापित धारणाओं को सीधे तौर पर चुनौती देता है।
वंदनीय माता जी ने ये गहरे सवाल हमारे सामने रखे हैं, तो अब श्रोताओं के लिए विचार करने वाली बात ये हो सकती है कि आज के इस बदलते समय में इन सवालों के क्या मायने हैं, इन्हें अपने निजी जीवन में और समाज के स्तर पर कैसे देखा जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है, और शायद इन विचारों पर मनन करके हम वर्तमान स्थिति को और बेहतर दिशा कैसे दे सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।